أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کے اس پہلے اشرے کے 9 دن مکمل ہو گئے آج 9 روزے مکمل کیے ہم سب نے اور یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوا آج کی رات جو 10 رمضان کی رات کہلاتی ہے یہ شب وفات ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اور انشاءاللہ ہم اپنے اس درس میں آخر میں جناب خدیجہ کی ذات کے بارے میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے عزیزان محترم سورہ ذاریات کی 50 آیات ہم نے کل مکمل کر لی تھی آیت نمبر 51 سے آج ہم تلاوت کا آغاز کریں گے آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ قرآن مجید کھولیں گے اور جن کے پاس اپلیکیشن میں قرآن ہے وہ کھولیں گے اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے آیت نمبر 51 سورہ ذاریات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں آیت نمبر 52 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر اس سے انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ یعنی رسول اللہ جو آئے ہیں اس قریش کے پاس مکہ میں جو آپ نے اعلان رسالت کیا ہے اور اپنی نبوت کے کام کا آغاز کیا ہے تو اور یہ جس طرح آپ کو جھٹلا رہے ہیں یہ قریش مکہ یہ روسہ مکہ جس طرح آپ کی تکذیب کر رہے ہیں جس طرح نعوذ باللہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں یا مجنون کہتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی جب کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا بھی وہی طبقہ ان امتوں کا بھی ان قوموں کا بھی وہی طبقہ کہ جو آج رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہے جو رسول اللہ کے لیے اس طرح کے غلط القابات لگاتا ہے اس ان قوموں کا بھی وہ طبقہ اسی طرح سے تھا کہ وہ ان رسولوں کو کہتے تھے کہ جادوگر ہیں یا مجنون کہتے تھے آیت نمبر 53 نمبر آیت اتواصوا به بل هم قوم طاغون کیا ان سب نے ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہے نہیں بلکہ وہ سرکش قوم ہے یعنی اللہ نے اس طرح کا عنوان دیا کہ جس طرح وہ پچھلی امتیں تھیں ان کے جو سرکش لوگ تھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سرکش لوگوں نے ایک دوسرے کو اسی کام کے لیے ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہو کہ رسولوں کی تکذیب کرنی ہے آیت نمبر 54 فتول عنہم فما انت بملوم بس آپ ان سے رخ پھیر لیں تو آپ پر کوئی ملامت نہ ہوگی یعنی اللہ کے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بگڑے ہوئے ہیں یہ جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں یہ جو بار بار نصیحت کے باوجود بھی راہ راست کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو آپ ان سے رخ پھیر لیں اگر آپ ان سے رخ پھیر لیں تو آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی یعنی آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کیوں رخ پھیرا کیوں ان کو چھوڑا ایسا کوئی مؤاخذہ آپ کا نہیں ہوگا آیت نمبر 55 وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین اور نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت تو مومنین کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے یہ بھی ایک بڑا بہترین اصول ہے قرآن مجید کا کہ مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. اگر آپ مومن کو نصیحت کریں گے تو وہ اس نصیحت سے اپنے لیے عبرت حاصل کرتا ہے, وہ اس نصیحت سے اپنی اصلاح کرتا ہے. اور آپ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اگر نصیحت کی جائے تو بگڑ جاتے ہیں, نصیحت کی جائے تو تیش میں آ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. تو مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, وہ نصیحت اسے نقصان نہیں دیتی. آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. عبادت کا جو مفہوم ہے یہاں پر, اس سے مراد جو ہم خاص شکل کی عبادات ہیں جیسے نماز ہے, رکوع سجود ہے, روزہ وغیرہ ہے, فقط یہ مراد نہیں ہے. عبادت مفہوم بندگی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو, اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے. آیت نمبر 57 ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں ان سے نہ کوئی روزی چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یہ جو میں نے جن و انس کو خلق کیا ہے تو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے, ان سے میں کوئی رزق نہیں چاہتا, نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی اللہ ظاہر ہے کہ اللہ اس سے مبرہ ہے کہ وہ کھائے پیے, اسی لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں. آیت نمبر 58 میں اس کی وجہ بھی بتا رہے خدا, ان اللہ هو الرزاق, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے, بڑی پائیدار طاقت والا ہے, بڑا مضبوط طاقت والا ہے. خدا خود رازق ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, نہ کہ روزی لیتا ہے کسی سے. آیت نمبر 59 فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ, بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں وہی سزائیں ہیں جو ان کے ہم مشربوں کے حصے میں تھی, لہذا وہ مجھ سے اجلت نہ مچائیں, یعنی جلدی نہ مچائیں. یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے میں وہی سزائیں ہیں جو ان کے ہم مشربوں کے حصے میں تھی. یعنی ظالموں کا انجام جو اس سے پہلے رہا ہے طول تاریخ میں, انسان کی تاریخ میں جو ظالموں کا انجام خدا کی طرف سے رہا ہے, جو بھی ظالم ہوگا اس کا انجام وہی ہوگا جو اس سے پہلے ظالموں کا رہا ہے. آگے کیا ہے, لہٰذا وہ مجھ سے اجلت نہ مچائیں, فلا یستعجلون, جلدی نہ کریں. جیسے وہ بعض قومیں انبیاء سے تقاضا کرتے تھے, جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں, جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں, تو وہ عذاب لے آئیں. تو یہاں خدا کہ اجلت نہ کرو, تم جلدی نہ مچاؤ, تمہارا انجام بھی وہی ہوگا کہ جو اس سے پہلے ظالموں کا ہوا ہے, تمہارے ہم مشربوں کا, یعنی پچھلے ظالموں کو اور اس دور کے ظالم یا قیامت تک آنے والے ظالم, ان کو خدا نے ملایا کہ ہم مشرب ہیں, ایک ہی یعنی فیلو ہیں, یہ گناہ فیلو کہیں ہم ان کو. آیت نمبر 60 فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, پس کفار کے لیے تباہی ہے اس روز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. پس کفار کے لیے تباہی ہے, جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے تباہی ہے, کب؟ جس اس روز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. بس ہو سکتا ہے کہ اس عارضی دنیا میں, اس دنیا کی جو آسائشیں ہیں, دنیا کی جو عارضی چمک دمک ہے, ہو سکتا ہے اس سے تو وہ فائدہ اٹھائیں, ہو سکتا ہے اس سے تو وہ استفادہ کریں, لیکن جب وہ دن آئے گا کہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس روز ان کے لیے تباہی ہے. یہاں پر سورہ ذاریات کا اختتام ہوتا ہے. اب ہم سورہ طور کا آغاز کریں گے. سورہ طور یہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے, और इसमें कुल 49 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर वकिताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल्बैतिल मामूर वस्सक्फिल मरफूर वल्बहरिल मस्जूर इन अज़ाब रब्बिक लवाकिअ मा लहू मिन दाफिअ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا। ये सूरह तूर की 10 आयत की तिलावत की है। तर्जुमे की तरफ मुतवज्जे रहेंगे इंशाअल्लाह। इस सूरत का आगाज भी उन बाज सूरतों की तरह है कि जिनका आगाज कसम से होता है। यहां भी खुदा ने इसी तरह कसम से आगाज किया है। वत्तूर कसम है तूर की। व किताबिम मस्तूर और लिखी हुई किताब की। फी रक्किम मंशूर एक कुशादा वर्क में। तूर की कसम, तूर वही तूर का पहाड़ जबल तूर के जहां पर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां जाकर खुदा से हम कलाम हुए थे। और यहां जो कहा लिखी हुई किताब, यानी तूर की कसम है और लिखी हुई किताब की कसम है, ऐसी किताब की जो एक कुशादा वर्क में है। इससे मुराद, इस किताब से मुराद कौन सी किताब है? बाज तफसीर में बाज कहते हैं कि इससे मुराद तौरेत है, चूंकि वहीं तूर पर जो नाजिल हुई थी किताब तो वो तौरेत थी। बाज के मुताबिक यही कुरान मजीद है और बाज के मुताबिक लोहे महफूज है, जो खुदा के इल्म में जो चीज लिखी हुई है ये वो मुराद। आयत नंबर 4 में कसम खाई वल बैतिल मामूर और बेत मामूर की कसम, यानी क्या? उस घर की कसम कि जो आबाद है, जो हर वक्त आबाद घर, मुराद वही रोए जमीन पर खाने काबा के जो बेत मामूर है, ऐसा ऐसा घर की जो बनाया गया। आयत नंबर 5 वस्सक्फिल मरफू और बलंद छत की कसम। बलंद छत से मुराद आसमान, खुदा ने आसमान के लिए छत का लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान में। आयत नंबर 6 वल बहरिल मस्जूर और मौजजन समंदर की कसम। इस समंदर से मुराद वही रोए अर्ज पर जो समंदर है उनकी कसम खाई। इन 5 कसमों के बाद जो जिस चीज को बयान कर रहे खुदा, यानी इतनी कसमों के बाद यकीनन ऐसी बात की जा रही है कि जो बहुत अहम है, ऐसी बात की जा रही होगी यकीनन कसम के बाद जो बात की जाती है कि जो बिल्कुल हकीकत है, कि जो वाकई होने वाली है, जिसके आने में, जिसके होने में कोई शक नहीं है, कोई रेब नहीं है। बस इन 5 कसमों के बाद अल्लाह फरमा रहा है आयत नंबर 7 में इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाकिअ, आपके रब का अजाब जरूर वाकई होने वाला है। मा लहू मिन दाफिअ, उसे टालने वाला कोई नहीं है। यौम तमूरुस समाउ मौरा, उस रोज आसमान बुरी तरह थरथराएगा। व तसीरुल जिबालु सैरा, और पहाड़ पूरी तरह चलने लगेंगे। यानी जिस निजाम कायनात को इस वक्त आप देख रहे हैं, जो निजाम कायनात इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, जमीन है, आसमान है और इसके बीच का सब कुछ, ये अब इस शक्ल में बाकी नहीं रहेगा, दरहम बरहम हो जाएगा। वो दिन आएगा, जरूर वाकई होने वाला है, कि जिस दिन यकीनन मुजरिमों के लिए अजाब का दिन है। फवैलुल यौमाइज़िल लिल मुकद्दिबीन, आयत नंबर 11 में। बस उस दिन तकदीब करने वालों के लिए तबाही है, जिन्होंने आयत खुदा को झुटलाया, जिन्होंने अंबिया की तालीमात का इनकार किया, उनके लिए तबाही है। निशानी क्या है इन आयात को झुटलाने वालों की? जो इस दिन को, इस कयामत के दिन की तकजीब करने वालों की निशानी क्या है? अल्लदीनहुम फी खौज़ी यलअबून, जो बेहूदगियों में खेल रहे हैं। जो खौज का लफ्ज इस्तेमाल किया यहां पर, अल्लदीनहुम फी खौज़ी यलअबून, खौज कहते हैं ऐसा काम कि जिसकी मजम्मत की गई हो, ऐसा काम जिसकी मजम्मत की गई हो उस काम में लगना, यकीनन बेहुदा। तो बस जो बेहूदगियों में खेल रहे हैं, बेहुदा बातों की तरफ, बेहुदा चीजों की तरफ कौन जाता है जिसको यकीनन उस दिन का कि जो कयामत का दिन है, जो हिसाब का दिन है, जो उस दिन के बारे में मशकूक होता है, उसी के लिए तबाही है, उस दिन उसी के लिए तबाही होगी। आयत नंबर 13, यौम युद्दाउना इला नार जहन्नम दअ, उस दिन वो शिद्दत से जहन्नम की आग की तरफ धकेले जाएंगे। ये कि जो झुटलाने वाले थे उस रोज को, ये कि जो बेहुदियों में खेल रहे थे, इनको उस दिन शिद्दत से जहन्नम की आग की तरफ धकेले जाएंगे। आयत नंबर 14, हाज़िहिन नारुल लती कुंतुम बिहा तुकद्दिबून, ये वही आग है जिसकी तुम तकजीब करते थे। आयत नंबर 15, अफसिहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून, अब यहां इनसे सवाल, बताओ क्या ये जादू है या तुम देखते नहीं हो? यानी जो तुम कह रहे थे, अंबिया को जादूगर कहते थे, अंबिया की तालीमात को जादू कहते थे, तो क्या ये जादू है कि जिसको तुम देख रहे हो, आज जो तुम्हें नजर आ रहा है, क्या बताओ क्या ये जादू है या तुम देखते नहीं हो? आयत नंबर 16, इस लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौन मा कुंतुम तअमलून, अब इसमें झुलस जाओ, फिर सब्र करो या सब्र ना करो, तुम्हारे लिए यकसा है, तुम्हें तो बहरहाल तुम्हारे आमाल की जजाएं दी जाएंगी। बस कयामत में जो जहन्नम में चला गया, अब वो उस आग पर सब्र करे, बर्दाश्त तो जाहिर बर्दाश्त तो नहीं, अगर उस पर सब्र करे या सब्र ना करे, यकसा है उसके लिए, और बहरहाल तुम्हारे आमाल की जजाएं दी जाएंगी। यहां तक जिक्र हुआ उन्हीं का कि जो झुटलाने वाले हैं, उनके लिए इस दुनिया के अख्तिताम पर जब वो अगला मरहला की जो हकीकत है कि जो आना है, उसके आने में कोई शक नहीं है, जब वो आएगा तो फिर इंसान जो इंसानों में से कि जो उस दिन की तकजीब करने वाले थे, जो बेहुदा कामों में लगे हुए थे, उनका हशर आपके सामने, उनके बारे में बात हुई। अब आयत नंबर 17 में मुत्तकीन की बात यहां से शुरू हो रही है कि जब वो मरहला आते हैं तो मुत्तकीन के साल में होंगे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नतिन व नईम, अहले तकवा तो यकीनन जन्नतों और नेमतों में होंगे। आयत नंबर 18, फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वकाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, उनके रब ने जो कुछ उन्हें अता किया है इस पर वो खुश होंगे और उनका परवरदिगार उन्हें अजाब जहन्नम से बचा लेगा। यानी जो साहिबान तकवा है उनके लिए जन्नतों और नेमतों में होंगे, उनके रब ने जो कुछ उन्हें अता किया है वो उस पर खुश होंगे और उनका परवरदिगार उन्हें अजाब जहन्नम से बचा लेगा। आयत नंबर 19, कुलू वशरबू हनी अम बिमा कुंतुम तअमलून, खुशगवारी से खाओ और पियो उन आमाल के अवज जो तुम करते रहे हो। जन्नत में जिनको दाखिल किया है तो दाखिल करने की वजह क्या है? आमाल है कि जो बजा लाए। लिहाजा याद रखिएगा, कुरान मजीद को हम जहां से भी देखें, जन्नत का जो वादा है, जन्नत में जब दाखिले की बात है, जन्नत की नेमतें जिसको अता की जाएंगी उसकी बात जब आती है, तो ये सब कुछ अमल के साथ मशरूत है। अगर कोई शॉर्टकट कोई दिखाए कि जो अमल के बगैर जन्नत तक पहुंचाने वाला रास्ता अगर आपको दिखा रहा है तो वो रास्ता गलत है, वो रास्ता जन्नत तक नहीं लेके जाएगा। यहां आप देख रहे हैं कि जन्नत में दाखिल हो चुके हैं और जो कुछ अल्लाह ने अता किया था उस पर खुश हैं, अल्लाह ने उन्हें अजाब जहन्नम से भी बचा लिया है। अब कह रहे हैं कि खाओ पियो, अभी जन्नत में से खाओ पियो, फिर वजह बताइए कि तुम्हें इस जन्नत तक किस चीज ने पहुंचाया? क्या कुलू वशरबू हनी अम बिमा कुंतुम तअमलून, खुशगवारी से खाओ और पियो उन आमाल के वज जो तुम करते रहे हो। आयत नंबर 20, मुत्तकीन अला सुरुरिन मसफूफा वज़वजनाहुम बिहूरिन ईन, वो सफ में बिछी हुई मसनदों पर तकिए लगाए हुए होंगे और बड़ी आंखों वाली हूरों से हम उनका अक्द करेंगे। यानी जन्नत में उनके आराम और आसाइश
और फिर उनके लिए हुर ऐन का जो वादा खुदा की तरफ से है। आयत नंबर 21, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين। और जो लोग ईमान ले आए और उनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की, इनकी औलाद को हम इनसे मिला देंगे और उनके अमल में से हम कुछ भी कम नहीं करेंगे। हर शख्स अपने अमल का गिरवी है। कुल उम्र इम बिमा का सबर रहीम, यानी ये जो जन्नत में गए हैं इनके लिए देखें जो जो इनामात अल्लाह ने कहे, जन्नत की नेमतों से इस्तेफादा और अल्लाह की रजा और इनका अल्लाह से राजी होना, वहां पर खाओ पियो जहां से तुम्हारे अमल की वजह से ये मिला है। और अब अगली नेमत क्या है, अगर औलाद, इनकी औलाद अगर ईमान में उन्होंने इनकी पैरवी की है, यानी अगर वालिदैन ये जो अगर नेक और सालेह थे और खुदा इनको यानी जन्नत के अहल ये बन चुके हैं अपने अमाल की वजह से, अगर इनकी औलाद ने ईमान में इनकी पैरवी की तो फिर अल्लाह इनकी औलाद को जन्नत में इनके साथ जमा कर देगा। जन्नत में फिर इनके मिलने का इम्कान मौजूद है और अल्लाह कह रहा है कि इनके अमल में हम कुछ भी कम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनके औलाद को इनके साथ मिलाने की वजह से इनके अपने किसी अजर में इनके अमल में कोई कमी हो या औलाद के किसी अमल में कोई कमी आए, नहीं, किसी के अमल में अल्लाह कोई कमी नहीं करेगा। हर शख्स अपने अमल का गिरवी है, अब वो अमल को किसी जिस अंदाज में करे, अगर अल्लाह की फरमा बरदारी और नेकी के रास्ते में अमल करें तो उसका इवज इन नेमतों की शक्ल में उसके लिए है, अगर नाफरमानी और मासियत के रास्ते में करें तो जैसा कि गुज़श्ता आयात में अंजाम बयान हुआ है। आगे मजीद नेमतें अहले जन्नत की गिनवाते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आयत नंबर 22, وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, और हम उन्हें फल और गोश्त जो उनका जी चाहे फराहम करेंगे। अब वहां यानी फल खाएं गोश्त खाएं उनके लिए फराहम है। आयत नंबर 23, يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ, वहां वो आपस में जाम फिराते होंगे जिसमें न बेहूदगी होगी और न गुनाह, वहां उनके लिए पाकीजा शराब के जाम है, ऐसी वो शराब के जिसमें न कोई बेहूदगी है न ही गुनाह। आयत नंबर, जैसे पहले भी इसका जिक्र आ चुका है शराब तहूर का, आयत नंबर 24, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, और उनके गिर्द नौउमर खिदमत गुजार लड़के उनके लिए चल फिर रहे होंगे गोया वो छुपाए हुए मोती हों। यानी इनकी खिदमत पर भी ऐसे लड़के ऐसे खुदा ने मुकरर किए हैं कि जो खुद ऐसे हैं कि जैसे छुपाए हुए मोती हों, यानी इस कदर पाकीजा। तो किसी ने रसूलुल्लाह से सवाल किया कि जिस तरह जिक्र है कि वो अगर मोती से छुपाए हुए मोतियों की तरह होंगे या जिस तरह हूरों की तारीफ होती है, तो खुदा जो खुद जन्नत में जाने वाला है वो किस किस्म का होगा, उसका हुलिया कैसा होगा, वो जन्नत में किस तरह से उसकी शक्ल और सूरत क्या होगी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह ये जो गिलमान हो या हूर वगैरह हो, इनकी सूरत इनका हुस्न जन्नत में जो मोमिन या मोमिना जाएंगे उनके सामने इनका हुस्न इसी तरह है जैसे कि मुकम्मल चांद के सामने सितारों का, यानी जिस तरह सितारों के दरमियान में चांद जगमगा रहा होता है, बंदे मोमिन या बंदे मोमिना इन जन्नती मखलूकात के दरमियान में इस तरह से नूरानी और वाज़े होंगे। आयत नंबर 25, व अक्बल बादुहुम अला बादी यतसाअलून, और ये लोग आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे, अहले जन्नत जो है आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे। قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, आयत नंबर 26 में कहेंगे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान डरते रहते थे, यानी हमने जरा मुश्किल जिंदगी गुजारी ईमान की वजह से, इताअत परवरदिगार की वजह से। आज भी ऐसा आपके हमारे सामने, आज का जो माशरा जिस तरह का बन चुका है, इस माशरे में अमूमन नजर भी आता है। अगर कोई जवान दीनदार बनना चाहे, कोई जवान दीन के मुताबिक अमल करना भी चाहे, तो घर वाले सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। अजीब किस्म के ताने दिए जाते हैं, दीन के पीछे जाओगे भूखे मरोगे, या इस तरह की और बातें। बस ये जो कह रहे ना, जन्नत कहते हैं, हम अपने घर वालों के दरमियान डरते रहते थे, जिस मुआशरे में थे वहां हम सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे, मुख्तलिफ खौफ होते थे, हमें डर होता था, लेकिन अब निकल गए उससे। आयत नंबर 27 में कह रहे हैं, फमन अल्लाह अलैना व वकाना अज़ाब अस-समूम, बस अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें झुलसा देने वाली हवाओं के अजाब से बचा लिया। अज़ाब अस-समूम, ऐसी हवा, गर्म हवा, गर्म जो कि जो इंसान को झुलसा दे, जला दे। ये अहले जन्नत कह रहे हैं, बस अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें झुलसा देने वाली हवाओं के अजाब से बचा लिया। आयत नंबर 28, अहले जन्नत की मजीद बात कह रहे हैं, इन्ना कुन्ना मिन कब्ल नदऊह इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, इससे पहले हम उसी को पुकारते थे, वो यकीनन एहसान फरमाने वाला मेहरबान है। यानी हम दुनिया में भी अपने इसी रब को पुकारते थे, जब किसी मुश्किल में गिरफ्तार होते थे, जब कोई तकलीफ होती थी, जब मुसीबतें बढ़ जाती थी, हम अपने रब को पुकारते थे। दीन पर साबित कदम, सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहते हुए हमने अपने रब को पुकारा है, बस उसी रब ने एहसान किया है, जैसे कि पिछले आयत में कहा, हमें झुलसा देने वाली हवाओं के अजाब से बचा लिया है। बस इसके बाद ये जन्नत वालों का, पहले अहले जहन्नम का तज़किरा हुआ, अहले जन्नत का तज़किरा हुआ, अब अल्लाह अपने हबीब को मुखातब करके आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून, लिहाजा आप नसीहत करते जाएं कि आप अपने रब के फजल से न काहिन हैं न मजनून हैं। ये कुरैश मक्का, वलीद बिन मुग़ीरा और इस तरह के लोग रसूलुल्लाह को, अबू जहल वगैरह रसूलुल्लाह को मजनून कहते थे। वलीद बिन मुग़ीरा काहिन भी कहते थे। काहिन किसे कहते हैं? काहिन कहते हैं कि जो अंदाजे और तखमीने के साथ ना वो खबरें देते हैं, मसलन पिछले जमानों की, गुज़श्ता उम्मतों के बारे में खबरें देते हैं, लेकिन वो अंदाजों पर होते हैं, तखमीने लगा के बताते हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि ए मेरे नबी, आप अपने रब के फजल से नहीं मजनून हैं नहीं काहिन हैं। और तीसरा जो नाम ये मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी को देते थे वो क्या था? अम यकुलून शायरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून, क्या ये लोग कहते हैं ये शायर है, हम इसके बारे में गर्दिश जमाना के मुंतजर हैं। कुरैश मक्का कहते थे रसूलुल्लाह के बारे में और कुरान की आयत के बारे में, वो कहते थे रसूलुल्लाह नौजुबिल्लाह शायर हैं और ये कुरान उनका अपना कलाम है, जिस तरह एक शायर का कलाम होता है। उसके बाद कहते हैं नतरब्बसु बिही रैबल मनून, कहते हैं कि हम मुंतजर हैं कि नौजुबिल्लाह रसूलुल्लाह को मौत आ जाएगी, ये इस दुनिया से चले जाएंगे, तो ये जो नबूवत का सारा सिलसिला बनाया है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये तहरीक भी खत्म हो जाएगी। ये मुशरिकीन मक्के के अंदाजे थे। अल्लाह ने जवाब क्या दिया है इनकी इस बात के जवाब में? अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 31 में, कुल तरब्बसु फइन्नी मअकुम मिनल मुतरब्बिसीन, कह दीजिए इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूं। यानी ये जो तुम कह रहे हो ना कि इंतजार करो, नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह अगर रहलत कर जाएंगे तो ये तहरीक खत्म हो जाएगी, ये सारा सिलसिला खत्म। हमने आयत नंबर 31 तक तिलावत की है, यहाँ पर मैं इख्तिताम करूंगा तिलावत का। और आपके खिदमत में अर्ज किया था कि हमने आज चूंकि शब वफात है उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का, तो इस सिलसिले में चंद एक नुकात आपकी खिदमत में उनकी बारे में, उनकी हयात के बारे में अर्ज करूंगा, और एक आध जुमला जिक्र मसाइब का भी अर्ज करें, ताकि आज के शब की मुनासिबत से हम आजादारी के उनवान से भी कुछ लम्हात अपने गुजारें। अज़ान मोहतरम, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मक्का की जो
उस जमाने में खाने काबा की वजह से अरब के दरमियान एक बड़े मरकज के तौर पे मारूफ था। इसमें लोगों की जो बुदोबाश थी, जो लोगों का पेशा था, जैसे भेड़े चरवाहे हैं, इसी तरह कुछ खेती बाड़ी वाले काम निस्बतन कम था खेती बाड़ी वहां पे। तो ज्यादातर जो पेशा अक्सर लोगों का कि जो साहिब सरवत लोग थे वो तिजारत का काम किया करते थे। तो जनाब खदीजा के वालिद हुवैलद वो एक ताजर थे और उनकी वफात के बाद उनकी तिजारत का जो काम था वो हजरत खदीजा ने संभाला था। और एक खातून होने के नाते जनाब खदीजा ने इस काम के लिए वो मुख्तलिफ ताजर के जो मक्का के रहने वाले वो हजरत खदीजा की तिजारत का माल लेकर सफर करते थे। जैसे कि ये सफर दो तरह के थे, कुरैश के सफर, गर्मियों के मौसम में ये लोग शाम की तरफ सफर करते थे तिजारत के लिए, और सर्दियों के मौसम में यमन की तरफ ये सफर करते थे। अजान मोहतरम, हजरत खदीजा को जाहिलियत के दौर में, अरब के उस जाहिलियत के दौर में जो लकब दिया गया था उसी लकब से उनके किरदार और उनकी फजीलत का अंदाजा होता है। ताहिरा आपका लकब था, पाकीजा खातून, जिनकी किरदार की पाकीजगी और उसकी गवाही उस दौर का मुआशरा दे रहा है, और आपको ताहिरा का लकब दिया गया था, आपको ताहिरा कहा जाता था। अल्लाह के नबी भी तिजारत के उमूर में काम करते थे, तो हजरत खदीजा का माल लेकर आपने एक सफर किया शाम की तरफ, और हजरत खदीजा का गुलाम था मैसरा, वो भी इस सफर में रसूलुल्लाह के हमरा था। जनाब खदीजा ने अल्लाह के नबी के बारे में बातें सुनी हुई थी, अपने गुलाम को ताकीद की कि वो पूरी दिक्कत से इसका मुशाहिदा करे इस सफर का, और वापसी पर आकर जो सफर के हालात हों वो इनके गोश गुजार करें। अल्लाह के नबी जब सफर से लौट आए तो जनाब खदीजा को जो मुनाफा हर दफा कोई ताजिर जाता था उसकी नस्बत हजरत खदीजा को कई गुना ज्यादा मुनाफा नसीब हुआ, और आपने रसूलुल्लाह के लिए जो मुआवजा तय किया था उसमें भी आपने कई गुना इजाफा करके मुआवजा अदा किया। उसके बाद ये इस खातून की मारिफत का अंदाज हम इस मारिफत का अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद आपने रिश्ता भिजवाया रसूलुल्लाह के लिए, और खुद आपने अपनी खास्तगारी का इजहार किया कि मैं आपके निकाह में आना चाहती हूँ। तो यूं हजरत अबू तालिब और जनाब हमजा और दीगर अकाबरीन बनी हाशिम के साथ, और इधर से हजरत खदीजा के खानदान के भी अफराद की मौजूदगी में अल्लाह के नबी और जनाब खदीजा का निकाह हुआ। निकाह के बाद हजरत खदीजा की दरख्वास्त पर अल्लाह के नबी उनके घर में रिहाइश पजीर हुए और यूं अपनी जिंदगी का आगाज किया। हजरत खदीजा वो खातून की जो जिनका माल तिजारत लेकर बहुत से लोग जाते हैं, और उस मक्का के उसी इलाके के हिसाब से ही कि जितनी उनकी सरवत थी उस इलाके के हिसाब से एक साहिब सरवत खातून थी, और अब अल्लाह के नबी के साथ शादी के बाद आप रसूलुल्लाह की खिदमत कर रही थी, आपके कामों में अल्लाह के नबी के कामों को खुद अंजाम देना, यूं ये एक बेहतरीन जिंदगी का आगाज हुआ। अल्लाह के नबी हिजरत इस ऐलान नबूवत से पहले आप गार हिरा में जाया करते थे और वहां तन्हाई में रहते थे, तो बाज़ औक़ात कई कई दिन आप गार हिरा में रहते थे, तो आके हजरत खदीजा से मुलाकात करके वापस चले जाते थे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता कि रसूलुल्लाह वापस आते और आकर पानी और ग़िज़ा वगैरह लेकर चले जाते थे, और बाज़ दफ़े ऐसा भी होता कि जनाब खदीजा खुद या हजरत ज़ैद बिन हारिसा के हमरा वहां तक अल्लाह के नबी तक गजा और ताम पहुंचाया करती थी। तो बस मोनिसो हमराज पैगंबर थी जनाब खदीजा, और जब तक जनाब खदीजा अल्लाह के नबी की जोजा थी तब तक रसूलुल्लाह ने किसी भी खातून से शादी नहीं की, और अल्लाह के नबी की जो औलाद है सिवाय हजरत इब्राहिम जो रसूलुल्लाह के बेटे हैं वो जनाब मारिया के बतन से हैं।
باقی جتنی بھی اولاد ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ہوں، حضرت قاسم ہوں اور جناب سیدہ کائنات، یہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ کے وطن سے ہیں. حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور سے رسول اللہ کے لیے اولاد نہیں تھی. یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں منابع اس بات کو قبول کرتے ہیں. چند ایک فضیلتیں اس بی بی کی میں عرض کروں گا. ایک روایت ہے، کتاب کا نام اہل سنت کی کتاب ہے، اسد الغابہ، کہ جو صحابہ کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، صحابہ اور صحابیات کے بارے میں. اسی کتاب میں میں نے پڑھا، ایک روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ کے ساتھ تھے، اور اس دوران میں حضرت جبریل نے رسول اللہ سے فرمایا، رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ کے پاس جناب خدیجہ ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ خدا کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام کہیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ نے ان کے لیے، اور انہیں بشارت دیجئے کہ ان کے لیے جنت میں اللہ نے ایسا مکان رکھا ہے کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی. یعنی پہلے سے ہی جنت میں موجود مکان کی خوشخبری دی جا رہی ہے. سب سے جو بڑا اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی کی جو طرفین میں موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کائنات میں چار خواتین ایسی ہیں کہ جو منزلت اور مقام میں کائنات کی تمام خواتین سے برتر بزرگ ہیں، بلندتر ہیں. قیامت تک آنے والی تمام خواتین، شروع سے لے کر قیامت تک کی تمام خواتین سے چار خواتین ایسی ہیں کہ جن کا رتبہ بلندتر ہے، بہت بڑا ہے، منزلت ان کی زیادہ ہے. وہ چار خواتین کون کون سی ہیں؟ ان میں نام، چار خواتین کے نام، خدیجہ بنت خبیلت سلام اللہ علیہا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب مریم و آسیہ علیہ السلام. یہ چار خواتین، اب دیکھیں جناب خدیجہ ان چار خواتین میں شامل ہیں کہ جو کائنات میں قیامت تک کے آنے والے تمام خواتین پر فضیلت رکھتی ہیں، برتری رکھتی ہیں. اور یہ ایک بات کہنے والا کوئی خطیب یا کوئی کسی نے جوش خطابت میں نہیں کہا، بلکہ یہ کائنات کے سچے ترین انسان محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. سب سے زیادہ جو اپنوں کی پہچان، باوفا لوگوں کی پہچان، دوستوں کی پہچان، محبت کرنے والوں کی پہچان کا جو طریقہ ہے، جو معیار ہے، وہ مشکلات ہیں. جس وقت مشکلات آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اپنے کون ہیں، خالص کون ہیں، محبت، حقیقی محبت کرنے والے کون ہیں. قریش مکہ نے رسول اللہ کا اور بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا. یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ 3 سال کے لیے شیب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی تھی مکہ کے قریب، وہاں پر رسول اللہ کو اور بنی ہاشم کو 3 سال وہاں رہنا پڑا ہے. نہ قریش کسی کو ان کو چیز بیچنے کی اجازت دے رہے تھے، نہ ان سے کوئی چیز خریدنے کی. سب نے ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے اتنی مجبوری آ گئی کہ بعض اوقات کئی کئی دن تک کھانے کے لیے غذا فراہم نہیں ہو پاتی تھی، اور یہاں تک نوبت آتی تھی کہ پتے اور گھاس کھا کر گزارا کیا جاتا تھا. اب آپ خود سوچیں، ایک ایسی خاتون کہ جو ملکۃ العرب ہو، کہ جس کا اپنا کاروبار ہو اس مکہ کے حساب سے، تو ایسی خاتون کا اس موقع پر ثابت قدم رہنا، جبکہ قریش مکہ کی طرف سے ایسی کوئی پابندی بھی نہیں تھی کہ جناب خدیجہ بھی یہاں رہیں. اگر الگ ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ الگ آسائش میں رہ سکتی تھی، لیکن کبھی نہیں. رسول اللہ کے ساتھ وفاداری اور اللہ کے دین کے لیے قربانی، جو جس کا آغاز اول اعلان بعثت سے ہی اللہ کے نبی کی ہمراہی میں تمام مشکلات کو برداشت کیا، شیب ابی طالب کے ان 3 سالوں کو بھی رسول اللہ کے ساتھ ان کے ہم قدم بن کر، ان کی ہم سفر بن کر، اور ان تمام مشکلات میں ان کی ڈھال بن کر اور ان کی مددگار بن کر رہی ہیں. جیسا کہ حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے، یہ بھی میں نے اسی اسد الغابہ کتاب میں پڑھی ہے، और भी मनाब में ज़ाहिर मौजूद है, मैं इसी किताब का हवाला दे रहा हूँ ताकि अगर कोई देखना चाहे तो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह जनाब खदीजा के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया करते थे, उनकी याद करते थे, और जब घर में हमारे घर में कभी कोई जानवर ज़िबा हो और गोश्त पकाया जाए, गोश्त बनाया जाए, तो रसूलुल्लाह ढूंढ कर खदीजा की सहेलियों तक, उनके घरों तक खाना पहुंचाते थे, उनके घर खाना भिजवाते थे। कहती फरमाती है कि एक दिन मैंने कहा, आप क्यों बूढ़ी जवान पर बूढ़ी को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि हजरत खदीजा की उम्र ज्यादा थी और जनाब आयशा की उम्र कम थी। तो उन्होंने कहा, मैंने ये कहा कि आप क्यों बूढ़ी पर जवान पर बूढ़ी को तरजीह दे रहे हैं। तो फरमाती है रसूलुल्लाह का रंग तब्दील हो गया, सुर्ख हो गया, गुस्से में आ गए, और आपने फरमाया खदीजा के बारे में कुछ मत कहो, खदीजा वो है कि उसने उस वक्त मेरी तस्दीक की जिस वक्त सारा मक्का मुझे झुटला रहा था, उसने उस वक्त अपने माल के जरिए से मुझे गनी कर दिया जब सब मुझे महरूम रखते थे, उसने मेरी ढारस बंधाई, मेरा हौसला बढ़ाया। तो हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने अल्लाह के नबी की बातें सुनने के बाद कसद किया, इरादा किया कि कभी भी दोबारा खदीजा के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। शेख अबी तालिब की जो सख्तियां थी, इन सख्तियों की वजह से जब ये 3 साल खत्म हुए हैं, तो इन 3 सालों के खात्मे के बाद हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, जो रसूलुल्लाह के चचा थे और आपके बेहतरीन मददगार थे, और उनके होते हुए कुरैश मक्का अल्लाह के नबी को नुकसान पहुंचाने से घबराते थे। उनका इंतकाल हुआ, और दूसरी बड़ी शख्सियत जनाब खदीजा की थी, क्योंकि इनका खानदान भी बड़ा था और जो ताल्लुकात और रवाबित थे खानदानी, उस वजह से ये एक बड़ी मददगार और अल्लाह के रसूल की ढाल थी। और इन 3 साल शेख अबी तालिब की इन सख्तियों के बाद जनाब खदीजा भी मरीज हो जाती हैं, मर्ज की शिद्दत में बिस्तर बीमारी पर हैं, और रसूलुल्लाह के लिए एक बेहतरीन हमसर, एक ऐसी जोजा कि जिसके साथ जिंदगी के बेहतरीन साल गुजारे हैं, और गालिबन 20 साल या 26 साल का अरसा एक साथ गुजारा है, अब जनाब खदीजा मरीज हैं, हालत मर्ज में हैं, यहां तक कि आज की ये रात आई है, आज की रात जनाब खदीजा की वफात की रात है। बस अल्लाह के नबी की जोजा की जिन जो महबूब जोजा की जो मददगार थी, ढाल थी, आज आखिरी रात है। जनाब जहरा कमसिन है, 5 साल की उम्र है, और इस कमसिनी में अपनी माँ को बिस्तर मरज पर, बिस्तर बीमारी पर देख रही है। कहती है कि जनाब खदीजा ने रसूलुल्लाह को वसीयत की, और ऐसी वसीयत की रसूलुल्लाह ने यकीनन आंसुओं, गिरते आंसुओं के साथ ये वसीयत सुनी होगी। बीवी फरमाती है कि मुझे अपने लिबास का कफन दीजिएगा, अपनी अबा या अपनी कमीज, कहा मुझे अपने लिबास का कफन दीजिएगा। और दूसरी वसीयत अपनी बेटी के बारे में की, कहा मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। जनाब अस्मा बिनत अमीस हैं कि जो जनाब सैयदे कायनात हजरत जहरा के वक्त रहलत, वक्त शहादत के वक्त जनाब अस्मा हजरत फातिमा के पास थी, ये वही अस्मा है। अस्मा बिनत अमीस कहती हैं, मैं हजरत खदीजा के आखिरी वक्त में उनके पास थी, तो मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा बेचैन थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। कहती मैंने पूछा, बीबी इस कदर परेशानी किस लिए, आपके लिए तो खुदा ने जन्नत के घर का पहले से कहा हुआ है, आप तो जन्नत की तरफ जाएंगी, आप तो रसूलुल्लाह की जोजा हैं, यकीनन खुदा ने आपके लिए बहुत बड़ा अजर रखा होगा। जनाब खदीजा फरमाती है, अब अस्मा कहती है, जनाब खदीजा ने कहा मेरी परेशानी की वजह मेरी बेटी फातिमा है, फातिमा अभी कमसिन है, उसके सर से माँ का साया जुदा होगा, यकीनन मेरी फातिमा को कदम कदम पे माँ की जरूरत पड़ेगी। अज़ान मोहतरम, जनाब खदीजा का इंतकाल हो जाता है, रहलत हो जाती है। मैं बस दो हस्तियां मासूमीन की जिंदगियों में से दो हस्तियों के बारे में बयान कर रहा हूँ, दो ऐसे मर्द की जिन्होंने अपनी अजवाज को खुद कब्र में उतारा है। पहला रसूलुल्लाह है कि जब खदीजा इस दुनिया से रुखसत हो गई, تو جناب رسول خدا نے خود تجہیز و تکفین کی ہے، قبر میں خود اتارا ہے، روتی آنکھوں کے ساتھ خدا کے رسول نے اپنے محبوب زوجہ کو اس دنیا سے رخصت کیا ہے، اور دوسری شخصیت انہی جناب خدیجہ کی دختر جناب فاطمہ زہرا ہیں کہ جب آپ کا وقت رحلت آیا تو آپ نے امیر المومنین سے کہا، اے علی مجھے خود غسل و کفن دیجئے گا اور رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا، عزاداروں رات کی تاریکی میں رسول کی بیٹی کا جنازہ اٹھا اور جنازہ نکلا، جس طرح جناب خدیجہ کے رحلت کے وقت آپ زہرا 5 سال کی بچی ساتھ ساتھ گئی ہوگی، آج جب رات کو زہرا کا جنازہ نکلا ہے تو جناب زینب بھی جو اپنے والدہ کی عمر کی تھی جس وقت جناب خدیجہ رحلت فرما گئی، آج جناب زہرا کی رحلت کے وقت 5 سال کی زینب کبریٰ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ مولا علی نے خود اپنے ہاتھوں سے زہرا کو قبر میں لٹانے کے بعد کہا، یا رسول اللہ زہرا کی جدائی نے علی کا صبر ختم کر دیا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے کہ خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب خدیجہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ مصیبتیں مشکلات جتنی بھی ہوں، اپنا اگر قیمتی سرمایہ کمائی ہوئی دولت بھی دینی پڑے، تب بھی اللہ کی راہ، اللہ کے دین کے راستے کو ترک نہیں کرنا، رسول اللہ کی نصرت و معیت کو ترک نہیں کرنا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہاں پر اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ طور کی آیت نمبر 32 سے تلاوت کا آغاز کریں گے۔